पृष्ठ संख्या 107, 9। वयस्कता के साथ जीवन क्रम में जटिलताएं विकसित होती हैं। हिंदी संवेदना के विकास में इस अवधि को छायावाद नाम ठीक ही दिया गया है। कभी कभी हिंदी समीक्षा में छायावाद शब्द एक दुर्वचन के रूप में प्रयुक्त होता दिखता है। भावुकता, कल्पना विलास, यथार्थ से अलगाव और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में मधुचर्या कहा, इन विविध मनस्थितियों को वर्णित करने के लिए एक मोटा शब्द छायावाद चल जाता है। यह परिस्थिति जहां अति सरलीकरण से उत्पन्न हुई है, वहीं अनेक विभ्रमों को उपजाती है। छायावाद के समतुल्य अंग्रेजी में रोमांटिक शब्द भी कभी कभी हल्के तिरस्कार के भाव को लपेटे रहता है, जबकि सेंटिमेंटल शब्द का प्रयोग तो निश्चित रूप से खिल्ली उड़ाने के लिए होता है। पर इस तरह के दोनों अंग्रेजी प्रयोग सामान्य बोलचाल के क्षेत्र में ही अधिक चलते हैं। साहित्यिक संदर्भों में रोमांटिक शब्द अपने पूरे भाव गांभीर्य के साथ प्रयुक्त होता है। हिंदी में छायावाद शब्द इस तुलना में अब काफी अमूल्यित दिखता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। संदर्भ निराला की कविता तोड़ती पत्थर का है, विश्लेषण एक नए कवि समीक्षक द्वारा। ये सारे शब्द बंद छायावादी हैं और गाढ़े के कुर्ते में चमकते हुए रेशमी पैबंद से लगते हैं, जो सौंदर्य को बढ़ाते नहीं उसका खुरदुरापन भंग करते हैं। समीक्षा के एक नए रूप में जो मुख्यतः नई कविता और वामपक्षीय विचारधारा के मिले जुले संदर्भों से विकसित हुआ है, छायावादी शब्द का यह प्रतिनिधि प्रयोग कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल के बाद छायावादी काव्य की जो समझ मुख्यतः नंद दुलारे वाजपेयी के माध्यम से विकसित हुई थी, वह फिर परवर्ती काव्य आंदोलनों के उत्साह अतिरेक में क्रमशः मंद पड़ गई। स्पष्ट ही यहाँ प्रश्न एक विशेष शब्द के प्रयोग का नहीं है, मुख्य बात है ऐतिहासिक विकास क्रम में उस प्रयोग से द्योतित रचना धारा के प्रति दृष्टिकोण की। साहित्य के इतिहास में किसी भी रचना धारा के लिए कोई नामकरण कभी पूरे तौर पर तोषप्रद नहीं हो सकता, छायावाद भी नहीं है। पर देखना यह है कि नामकरण के प्रति असंतोष रचना धारा ही के प्रति कोई पूर्वाग्रह न बना दे। यह सचमुच एक विचित्र स्थिति है कि साधारण ढंग से छायावाद कहने पर चांदनी रात, नौका विहार, जूही की कली आदि से संबद्ध कविताओं की याद अधिक दिलाई जाती है। कामायनी प्रसाद, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास निराला को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। छायावाद का यह मनश्चित्र बनाने में कुछ उस युग के समीक्षकों और इतिहासकारों का योगदान है जो छायावाद को मूलतः प्रकृति संबंधी काव्य मानना चाहते थे। प्रकृति काव्य के प्रेमी होने के कारण स्वयं रामचंद्र शुक्ल इसी धारणा के निकट थे। उनका आग्रह तो यहाँ तक था कि प्रकृति को ही सर्वतः आलंबन मानकर कविता लिखी जा सकती है, लिखी जानी चाहिए। मानव उदाहरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से उन्होंने स्वयं एक लंबी कविता सवैया जैसे छंदों में लिखी थी। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहां। हिंदी साहित्य का इतिहास में छायावादी कवि चतुष्टय में से सुमित्रा नंदन पंत के काव्य के प्रति विशेष रुझान का एक कारण भी आचार्य शुक्ल के मन का यह प्रकृति प्रेम और उसके प्रति उत्साह है। यह ठीक है कि छायावादी कवियों के आरंभिक काव्य में प्रकृति के प्रति एक किशोर सम्मोहन भाव दिखता है, पर धीरे धीरे इस प्रकृति का स्थान मानवीय जीवन और उसकी विविध जटिल भाव भूमियां ले लेती हैं। जब सुमित्रा नंदन पंत ने शुरू शुरू में लिखा था, पृष्ठ संख्या 108, छोड़ द्रुमों के मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, तब शायद उनके जग में प्रकृति का ही विशेष महत्व था। पर यथार्थ की समझ के प्रयत्न में प्रकृति को बात दिए बिना भी उनकी तथा अन्य छायावादी कवियों की कविताओं में मनुष्य और उसके सामाजिक परिवेश का तनाव क्रमशः केंद्र में आता जाता है। विडंबना इस बात की है कि स्वयं इन कवियों की विश्व दृष्टि जहाँ जटिलतर और समृद्धतर होती गई है, वहाँ इन कवियों के काव्य का जो मनश्चित्र हिंदी पाठकों और समीक्षकों की पहली पीढ़ी में बना था, वह हमारे साहित्यिक वातावरण में अभी परिव्याप्त है। प्रकृति काव्य और छायावादी काव्य में विभ्रम उत्पन्न होने की संभावना है, इस बात को जयशंकर प्रसाद ने समझा था। अपने निबंध यथार्थवाद और छायावाद का समापन करते हुए उन्होंने लिखा, प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। इतनी खरी चेतावनी के संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है कि रचनात्मक स्तर पर प्रकृति का सीमित उपयोग ही छायावादी कवियों ने किया है। यह बात कहने पर कुछ अटपटी सी लग सकती है कि हिंदी में छायावाद का मनुष्य चित्र बनाने में एक बड़ा योगदान रविंद्रनाथ ठाकुर, विशेषतः उनकी गीतांजलि का है, क्योंकि आरंभिक काल में यह मानकर चला जाता था कि हिंदी का छायावादी काव्य बंगला के अनुकरण पर है। पुराने ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह बात क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 566। अतः गीतांजलि में जैसा प्रकृति चित्रण मानवीय प्रेम और अध्यात्म का संश्लेष था, वैसा ही काव्यात्मक वातावरण छायावाद का मान लिया गया। हिंदी पाठक की विचित्र दीक्षा थी कि गीतांजलि पढ़ने पर उसे जैसी अनुभूति होती, वैसी ही अनुभूति वह अनिवार्यतः छायावादी आस्वादन के साथ जोड़ लेता था। आधुनिक काल के आरंभ से बंगाल का प्रभाव उस युग के मध्य देशीय जीवन में था, इसका विवेचन हम पहले कर आए हैं। साधारण आचार व्यवहार से लेकर साहित्यिक रचना कर्म के लिए मध्य देश को आदर्श बंगाल से मिलता था। यह तत्कालीन संस्कृति के प्रवाह की दिशा थी। भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्वाभाविक था, क्योंकि 19वीं शती में पुनर्जागरण का नेतृत्व बंगाल ने किया था। निराला का काव्य व्यक्तित्व मनोविश्लेषण के स्तर पर एक गुत्थी है, उसका कोई समाधान नहीं होता यदि उसमें से बंगाल के संपर्क को बात कर दिया जाए। निराला बैसवाड़े के ग्रामीण परिवार के थे, पिता सामान्य सिपाही, शिक्षा कुछ नहीं हुई, हिंदी भाषा के जीवित संपर्क से अलग रहे, फिर उनके काव्य में रचनात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है। 1927 में वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद को अपने गांव गढ़ा कोला से एक पत्र में निराला लिखते हैं, आप मुझे लिफाफे में पत्र लिखने पर, पृष्ठ संख्या 109, अपना एक सादा लेटर पेपर साथ ही रख दिया कीजिएगा, यहाँ कागज का बड़ा अभाव रहता है, वज्र देहात है। यह स्थिति ठेठ हिंदी क्षेत्र के उस इलाके की है जहाँ सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और आधुनिक काल के बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म और पालन पोषण हुआ, और उस कवि की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति है जिसे राम की शक्ति पूजा लिखनी है। तब विधेयवादी दृष्टिकोण का समर्थन न करते हुए भी दिखता है कि बैसवाड़े के संस्कारों को परिष्कार कलकत्ता से टकराहट में मिला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बंगला का यह रचनात्मक संपर्क आधुनिक काल में भारतेंदु के समय से ही दिखाई देने लगता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक अपने ग्रंथ में भारतेंदु के पिता बाबू गोपाल चंद्र की कृतियों में से प्रेम तरंग का ब्यौरा देते हुए ब्रजरत्न दास लिखते हैं, ग्रंथकर्ताओं में स्वर्गीय श्री बाबू गोपाल चंद्र उपनाम गिरिधर दास जी तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम दिया है। इसमें 64 पृष्ठ और 361 पद हैं, जिसमें बाबू गिरिधर दास के 23, बाबू हरिश्चंद्र के 204 और 44 चंद्रिका उपनाम के हैं, अंतिम 34 बंगला के हैं। पृष्ठ 58। प्रेम तरंग के वर्तमान रूप में पहली 100 रचनाएं हरिश्चंद्र की हैं, ब्रजभाषा पद और कुछ खड़ी बोली नज्म, फिर बंगला गान है संख्या में 46, जो अधिकतर चंद्रिका उपनाम के हैं, कुछ में हरिश्चंद्र की भी छाप है, और अंत में रसा उपनाम से भारतेंदु की 2 उर्दू गजल हैं। चंद्रिका के बारे में बताया जाता है कि वे भारतेंदु की बंगाली मित्र थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्जागरण के बंगला मनीषी रामकृष्ण देव, विवेकानंद और रविंद्रनाथ से प्रेरणा लेकर निराला साहित्यिक रचनात्मक ऊर्जा में अपने गुरु परंपरा से आगे बढ़ जाते हैं। दुर्गा पूजा के देश बंगाल में शक्ति आराधना पर वैसी ऊर्जास्वी रचना नहीं लिखी गई जैसी राम की शक्ति पूजा है। शक्ति का मंत्र निराला को और किसी सीमा तक जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत को भी बंगाल से मिला, पर शक्ति काव्य मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश में इन छायावादी कवियों ने रचा। कामायनी, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा में शक्ति और मानवीय चेतना का जैसा आख्यान है वैसा बंगला काव्य या स्वयं रविन्द्रनाथ में नहीं मिलता। बंगाल की सुकुमार कल्पना और सूक्ष्म प्रतिभा मध्य देशीय पौरुष के संपर्क में तथा ब्रजभाषा के विरोध में उठ खड़ी हुई खड़ी बोली की खड़खड़ाहट, बंगला भाषा की कोमलता के संस्पर्श से शक्ति और दीप्ति का संश्लेष बन गई। बंगाल से जो कुछ निराला ने लिया उसमें बहुत कुछ जोड़कर जैसे उन्होंने गुरु ऋण को पूरा किया, इसलिए रविंद्रनाथ का काव्य और गीतांजलि जिस वातावरण का निर्माण करते हैं वह हिंदी के छायावादी काव्य संसार का एक अंश मात्र है। उसके केंद्र में तो शक्ति चेतना का वह उत्स है जिसने भारतीय पुनर्जागरण को परिचालित किया था और जो फिर क्रमशः साहित्य के सूक्ष्म स्तरों पर उन्मुक्त हुआ। रविंद्रनाथ में प्रकृति और राष्ट्रीयता के विविध रूप हैं, श्रृंगार और अध्यात्म का सूक्ष्म चित्रण है, प्रार्थना की गहराई है, पर शक्ति काव्य का वह रूप नहीं है जो प्रसाद या निराला में मिलता है। छायावाद शब्द के आरंभिक प्रयोगकर्ता ने छाया शब्द से ठीक ठीक क्या व्यंजना देनी चाहिए थी यह बता पाना तो कठिन है, पर इस संदर्भ में छाया शब्द की कई व्याख्याएं हिंदी समीक्षा में प्रचलित हैं। इस नई रचनाधारा के विरोधियों ने छाया का अर्थ प्रभाव या अनुकरण किया। एक दूसरे वर्ग ने छाया का अर्थ लिया सूक्ष्म या वायवीय। एक अन्य अर्थ हुआ अस्पष्ट। कवि प्रसाद ने संस्कृत प्रयोगों के साक्ष्य पर छाया की व्याख्या की, मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता। छाया का अर्थ पानी, आब, चमक, कांति लेते हुए उन्होंने निष्कर्षतः कहा, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक पृष्ठ संख्या 110 निर्भर करती है। यहाँ स्पष्ट ही अधिक संपृक्त और रचनात्मक दृष्टि प्रसाद की है। छाया के प्रभाव सूक्ष्म और अस्पष्ट जैसे अर्थों का प्रत्याख्यान करते हुए और उसे महज प्रकृति काव्य से अलग करके उन्होंने छायावाद की संरचना में चमक और कांति पर बल दिया। यह चमक और कांति शक्ति की ही एक पहचान है। इस तरह छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। इस युग की प्रतिनिधि रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी में देव और असुर संस्कृतियों से भिन्न और उनकी तुलना में अधिक सृजनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान है। उसके वर्तमान संकट की समझ है और इस संकट के बचाव की संभाव्य दिशा संकेतित है। थके और पराजित मनु के प्रति अपने उद्बोधन का समापन श्रद्धा इन शब्दों में करती है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यह मूल संदेश शक्ति के नियोजन का है और राष्ट्र और संदर्भ राष्ट्रीय होते हुए भी चिंता समस्त मानवता की है। इसी के समानांतर स्थिति निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में है। रावण के पक्ष में शक्ति आ गई है, राम यह जान समझ कर स्तब्ध और हताश है। अन्याय जिधर है शक्ति है रिपीट अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। प्रसाद के मनु और निराला के राम की हताश मनस्थिति बहुत कुछ मिलती जुलती है। मनुष्य मात्र के जीवन में कभी न कभी ऐसी मनस्थिति आती है, पर मनुष्य का साहस और सर्जन क्षमता उसका अतिक्रमण भी करती है। जाम्बवान राम को परामर्श देते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, संपूर्ण कविता की रचना दृष्टि यहीं से आलोकित और प्रवाहित होती है। शक्ति की परिकल्पना अनुकरण में संभव नहीं, शक्ति को सदा मौलिक रूप में ही परिकल्पित किया जा सकता है। शताब्दियों से पराधीन देश को इससे बड़ी और सार्थक दृष्टि कोई नहीं दे सकता। यहाँ राम जितने अपने लिए हैं उतने ही सामूहिक राष्ट्रीय मन के प्रतीक हैं और उतने ही स्वयं कवि व्यक्तित्व के। ये कई अर्थ स्तर एक दूसरे से टकराकर मानवीय आत्मशक्ति का एक विराट आख्यान प्रस्तुत करते हैं। कविता का अंत होता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। महाशक्ति का राम के वदन में लीन हो जाना आत्मशक्ति के विकास की ही व्यंजना देता है। शक्ति अपने से बाहर कहीं नहीं, अपने ही अंदर है, केवल उसे जागृत और विकसित करना है, और यह प्रक्रिया अपने में मौलिक है, विशिष्ट है। इसी संदर्भ में शक्ति की मौलिक कल्पना करने में शम राम को संबोधित करते हुए उन्हें नवीन पुरुषोत्तम कहा गया है। श्रद्धा सर्ग की अंतिम पंक्तियों में शक्ति और विजय का जो संदेश है, विजयनी मानवता हो जाए, वह यहाँ पृष्ठ संख्या 111 दूसरे कथावृत्त के बीच से फूटता है। शक्ति साधना का मूल स्वर एक है और यही स्वर एक अपेक्षा विस्तृत फलक पर निराला के तुलसीदास में मुखरित होता है। तुलसीदास काव्य कवि तुलसी की रचना प्रक्रिया को गतिशील होते हुए अंकित करता है और इस रचना शक्ति के विमुक्त होने में राष्ट्रीय जीवन के सांस्कृतिक संदर्भों और कवि के व्यक्तिगत प्रणय की अंतर्क्रिया को सूक्ष्म स्तरों पर आलोकित करता है। रत्नावली के जन प्रचलित कथानक को लेकर निराला ने कवि के मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा सृजनात्मक पक्षों को एक संश्लिष्ट रूप में उभारा है। काव्य के अंतिम अंश में तुलसी को अपनी प्रिया का व्यक्तित्व देवी भारती सरस्वती में रूपांतरित होते दिखता है। उनकी आरंभिक सांस्कृतिक चिंतना और पत्नी के प्रति एकांत प्रणय भाव जैसे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। उनके हृदय में एक नया स्वर उठता है जो आसुर भावों से भुने प्रदेश में सर्वत्र गूंज उठता है। उस स्वर क्रम का एक छंद इस प्रकार है, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर, भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। संस्कृतियों और विचारधाराओं का संघर्ष यह तुलसी के रामचरितमानस का प्रमुख उपजीव्य बनता है। भारती इधर है उधर सकल जड़ जीवन के संचित कौशल। यह संघर्ष निराला के तुलसीदास का है, स्वयं अपने कवि कर्म में निराला का है, जिसे वे राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से अंकित करते हैं। रावण अर्धमरत भी अपना मैं हुआ अपर। इस तरह एक ही रचना में कई स्तरों पर यह जीवन मूल्यों और पक्षों का संघर्ष चित्रित हुआ है, जिसे शक्ति पूजा के आरंभ में कवि ने कुछ नाटकीय मुद्रा में राम रावण का अपराजेय समर कहा है। कामायनी की तो मूल वस्तु यही है, देव असुर और मानव संस्कृतियों की टकराहट। पहले देव और असुर संस्कृतियों का संघर्ष है, जिसका चित्रण प्रधानतः ईड़ा सर्ग में हुआ है। था एक पूजिता देहदीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। फिर देव और असुरों की साझी संस्कृति से टकराकर नई मानवीय संस्कृति विकसित होती है, जो नश्वर है पर अपनी नश्वरता में ही सृजनात्मक बनती है और प्रेम की नई क्षमता को विकसित करती है। आधुनिक युग के पुनर्जागरण में यह सांस्कृतिक संघर्ष की वस्तु अर्थ के स्तर पर और संचरणशील हो जाती है। अब टकराहट भारतीय और पाश्चात्य धाराओं के बीच है। इस सारे संघर्ष में मौलिक रचना शक्ति की जय भारती तुलसीदास और दुर्गा राम की शक्ति पूजा, जिसकी प्रतीक अधिष्ठात्री हैं, कवि के आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु है। राम की शक्ति पूजा तुलसीदास और कामायनी में ही नहीं, प्रसाद के आंसू में भी, जिसे छायावादी परिदृश्य के अंतर्गत विरह काव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, सामान्य द्वंद्व और संघर्ष को अतिक्रमित कर जाने की प्रक्रिया अंकित हुई है। कामायनी में सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर आनंद की जो स्थिति है, कुछ वैसी ही स्थिति आंसू में वेदना की है। इसलिए वेदना को कवि ने कहा है, जगत द्वंद्व के परिणय की है सुरभि मई जयमाला। आंसू के अंतिम अंशों में पहुंचकर कवि का विरह भाव सार्वभौम वेदना में रूपांतरित हो पृष्ठ संख्या 112 जाता है। यहाँ कवि का अनुभव इतना सघन हो उठता है कि उसे प्रकृति में और मानवता में जहाँ कहीं पीड़ा दिखती है, मानस कुमुदों का रोना, बौने जल निधि का हाहाकार मचाना, ज्वालामुखियों का मुंह सिए ताप झेलना, मधुकर की कली से मनमानी, फिर चिर वंचित भूखों की प्रलय दशा, वह उसे अपनी वेदना का ही रूप लगती है। यह वेदना का अद्वैत है। इन सारी पीड़ाओं के तत्व में उसी रचना की उपलब्धि होती है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसो प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। आंसू की सघन वेदना में से निराशा का स्वर नहीं उपजता, उसमें से विराट रचना आस्था फूटती है। वेदना के आलोक का सर्वव्यापी प्रसार महादेवी वर्मा ने एक दूसरे स्तर पर आत्मीयता से चित्रित किया है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। छायावाद के विशिष्ट काव्यों और लंबी कविताओं के अतिरिक्त छोटे गीतों और कविताओं में भी मूलतः पुनर्जागरण की चेतना अंतर्व्याप्त दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात यहाँ है ऐहिक जीवन और शरीर का महत्व, जिसे मध्यकालीन संतों और कवियों ने पानी का बुलबुला और काग गीत गीध का भोजन कहा था। ऐहिकता में यह आस्था आगे मानवीय आत्मविश्वास का आधार बनती है। इस एक बिंदु पर समूची मध्यकालीन हिंदी मानसिकता का जैसे कायाकल्प हो गया हो। संन्यास, वैराग्य, तपस्या और परलोकवाद में आस्था जैसे मूल्यों के स्थान पर अब ऐहिक जीवन, इहलोक और मानव शरीरों के आकर्षण का महत्व प्रतिपादित होता है। निष्काम कर्म की जगह प्रसाद की कामायनी में कर्म और भोग के सामंजस्य का गुणगान हुआ है। कबीर, सूर, जायसी, तुलसी भक्ति काल के अंतर्गत संसार का निषेध करके परम तत्व की ओर मन को ले जाने का उपक्रम करते हैं। छायावाद के कवि संसार को पूरी तरह साकार से उसे परम तत्व से अभिन्न देखते हैं। हिंदी मानसिकता के विश्व दृष्टि पुनर्जागरण के संक्रमण में जैसे पूरी तरह घूम गई हो, तब यह स्वाभाविक है कि भक्तिकालीन कवियों जैसा बड़ा व्यक्तित्व छायावादी कवियों का भी हो। सुमित्रा नंदन पंत अपनी कृतज्ञता शीर्षक कविता में जो छायावाद के मुख्य काल के बाद 1956 में लिखी गई है, मानव शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। देह के दोने में आत्मा के पावक धारण करने का बिंब शरीर की क्षमता को पूरी तरह प्रमाणित करता है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में ऐहिक जीवन में इसी आस्था और श्रद्धा का आख्यान प्रसाद ने किया है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। हमारी संस्कृति में शरीर और संसार की महत्ता एक बार फिर से स्थापित करने में छायावाद का योगदान केंद्रीय है, जबकि सामान्यता उसे अतींद्रिय अनुभव और कल्पना लोक से जुड़ा हुआ समझा जाता रहा है। पृष्ठ संख्या 113। हिंदी आलोचनाओं की दिलचस्प गुद्दलिकाओं में से एक यह है। वस्तु स्थिति है कि मध्यकालीन कवि के लिए संसार पचड़ा था, आधुनिक युग का छायावादी कवि संसार में आनंद की संभावना देखता है। प्रसाद के प्रबंध काव्य कामायनी और पंत की संक्षिप्त कविता कृतज्ञता दोनों में संसार और देह के प्रति चिंता और कृतज्ञता की भावना से आरंभ करके कवि आनंद की भाव भूमि तक पहुंचता है। चेतनता एक विलस्ती आनंद अखंड घना था। कामायनी। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर। कृतज्ञता। यह छायावादी काव्य की मुख्य रचना भूमि है और अपने ऐतिहासिक काल के बाहर भी सक्रिय होने पर छायावादी कवि यहाँ पहुंच पाता है। छायावादी काव्य में शक्ति के आवाहन का एक और रूप इस युग के जागरण गीतों में मिलता है। पुनर्जागरण चेतना की बड़ी सूक्ष्म और प्रीतिकर अभिव्यक्ति इन गीतों में हुई है। मनुष्य की और प्रकृति की भी सुप्त चेतना को जगाने का उपक्रम यहाँ कवि ने सामान्यता प्रशमित और कभी कभी ओज की मुद्रा में किया है। छायावादी काव्य में एक बड़ी संख्या इन प्रभाती और जागरण गीतों की है, जिसमें एक ओर शक्ति और चैतन्य का आवाहन है और एक दूसरे तथा समकालीन संदर्भ में विरासती स्वाधीनता के संघर्ष से जुड़े हैं। प्रथम प्रभात, आंखों से अलग जगाने को अब जागो जीवन के प्रभात, बीती विभावरी जागरी प्रसाद। जागो फिर एक बार, प्रिय मुद्रित दृग खोलो, जागा दिशा ज्ञान, जागो जीवन धन के निराला। जाग बेसुध जाग, जाग तुझको दूर जाना महादेवी। प्रथम रश्मि, ज्योति भारत, सुमिता नंदन पंत जैसी अनेक जागरण कविताएं अनायास स्मरण हो आती हैं। इनमें से कुछ गीतों में व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्र जागरण के भाव एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। मानवीय प्रणय और देश प्रेम का संश्लिष्ट रूप वस्तुतः छायावादी काव्य से पहले ही श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि स्वच्छंदतावादी कवियों की रचनाओं में मिलने लगता है। त्रिपाठी के खंड काव्य पथिक और स्वप्न का विधान मुख्यतः इसी वस्तु पर विकसित हुआ है। मुख्य बात यह है कि छायावादी काव्य के इस बहुत बड़े अंश में पुनर्जागरण की चेतना सीधे लहराती है। गीतों के अतिरिक्त लंबी कविताओं के खंडों में जागरण का यह स्वर गूंजता है। आंसू के बाद के हिस्से में एक पूरे का पूरा खंड प्रातःकालीन बिंबों के बीच जागरण बेला का चित्रण करता है। वह मेरे प्रेम बिहसते जागो मेरे मधुवन में, फिर मधुर भावनाओं का कलरव हो इस जीवन में, मेरी आहों में जागो सुस्मित में सोने वाले। पृष्ठ संख्या 114। हे जन्म जन्म के जीवन साथी, संस्कृति के दुख में पावन प्रभात हो जावे, जागो आलस के सुख में। इसी प्रकार जागरण स्वर तुलसीदास के समापन अंश में उभरता है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो किरने चेतन, तेजस्वी है तमत जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। लंबी और छोटी कविताओं और गीतों की बंदिश में विरह और प्रेम और आनंद के विविध भाव भूमियों में सर्वत्र एक ज्योति और जागरण की चेतना स्पंदित है। इस तरह अपने व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्र प्रेम की अनुभूति में और उनके संश्लेष में छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। यहाँ शक्ति काव्य का सामान्य साधारण अर्थ राष्ट्रीय काव्य नहीं लगाना है। इस टिप्पणी का उद्देश्य राष्ट्रीय काव्य के महत्व को कम करना नहीं, पर यह ध्यान दिलाना है कि छायावादी काव्य में राष्ट्र जागरण से अधिक समग्र चेतना का जागरण और आह्वान है। उसमें अंतर्निहित शक्ति के विकास का रचनात्मक उपक्रम है। यहाँ राष्ट्रीय से अधिक संपूर्ण सांस्कृतिक जागरण प्रधान है। राष्ट्रीय जागरण वस्तुतः सांस्कृतिक जागरण के अंग रूप में आता है, जो पुनर्जागरण की मूल धारा के अनुरूप है। यूं कह सकते हैं कि छायावाद की राष्ट्रीयता में आधार राजनीति की अपेक्षा संस्कृति है। राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक पुनर्जागरण का स्वरूप मूलतः संश्लिष्ट है। वह समग्र मानवीय और भारतीय व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयासशील है और पुनर्जागरण अवरुद्ध वहीं हुआ है जहाँ राजनीति को गलत अनुपात में महत्व मिल गया। छायावादी कवि पर जहाँ अति भावुकता, सूक्ष्मता और वायवीयता के आरोप लगाए गए हैं, वहीं उसमें पलायनवाद को भी ढूंढ निकाला गया है। समीक्षा ग्रंथों में विविध वादों के अंतर्गत जहाँ रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद आदि की चर्चा होती है, वहाँ पलायनवाद का भी उल्लेख किया जाता है। और अनिवार्यता प्रसाद की एक पंक्ति बार बार उदाहरण रूप में प्रस्तुत होती है। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, बिना इस पूरी कविता समझे यह आरोप संपूर्ण छायावादी काव्य पर लगा दिया जाता है कि उसमें जीवन के संघर्ष से पलायन करने की वृत्ति है। हिंदी आलोचना में छायावाद को लेकर जिस गुद्दलिका का पहले उल्लेख किया गया उसी का एक अंश यह है। इस कविता में विश्राम की मुद्रा का चित्रण है या पलायन की आकांक्षा है यह समझने का यत्न नहीं किया गया। विश्राम तो श्रम का पूरक है और पलायन कर्म श्रम संघर्ष से भागना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म के माध्यम से कर्म और भोग की संश्लिष्ट तथा आधुनिक संदर्भ में नई दृष्टि प्रस्तुत करने वाले कवि के लिए इससे बड़ी विडंबना की बात और क्या हो सकती है कि उसे पलायनवादी करार दिया जाए। गीता को केंद्र में रखकर गतिशील हुए पुनर्जागरण आंदोलन में निष्काम कर्म के स्थान पर कर्म भोग के संश्लेष को प्रस्तावित कर सकना प्रसाद जैसे समर्थ रचनाकार के लिए ही पृष्ठ संख्या 115 संभव था। गीता की मूल दृष्टि को प्रशस्त कर पाना वस्तुतः किसी भी भारतीय लेखक और विचारक के लिए स्मरणीय है। इस संदर्भ में यह सोचकर अटपटा लगता है कि बहुत से हिंदी आलोचकों ने भारतीय पुनर्जागरण में से विकसित और उसे समृद्ध करने वाले छायावाद को अंग्रेजी प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करना चाहा है। छायावादी कवियों के अंग्रेजी ज्ञान मात्र को यदि यहाँ ध्यान में रखा जाए तो कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में 6वीं और 8वीं कक्षा तक पढ़े कवि थे, इंटरमीडिएट तक गए ऐसे भी हैं और एमए तथा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले भी हैं। यदि आधुनिक मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाए तो जान पड़ेगा कि छायावादी कवि के अंग्रेजी ढंग की शिक्षा की उच्चता और उसके द्वारा रचित काव्य की उत्कृष्टता में उल्टा अनुपात है। 6वीं जमात तक पढ़ा शायद सूची में ऊपर होगा और डॉक्टर कवि सबसे नीचे। यूँ इससे कोई सामान्य निष्कर्ष किसी भी दिशा में निकालना उचित नहीं। हो सकता है कि यह सिर्फ एक संयोग भर हो, पर फिर भी अपने में दिलचस्प है, खास तौर से छायावाद के उदय में विदेशी प्रभाव की चर्चा के संदर्भ में। कई दृष्टियों से जयशंकर प्रसाद छायावाद के पहले कवि हैं। 1918 में प्रकाशित उनका काव्य संग्रह झरना इस नए ढंग की कविताओं का पहला संकलन है। जैसे मनुष्य के बच्चे को अन्य प्राणियों की तुलना में वयस्क होने के लिए सबसे अधिक समय लगता है, वैसे ही अपने समकालीनों के बीच कवि बनने में प्रसाद को लगा। पर एक बार कवि बनकर फिर वे वैसे ही शीर्षस्थ रहे। कामायनी के पाठक को यह मानने में कठिनाई लग सकती है कि चित्राधार और कानन कुसुम में संकलित कविताएं प्रसाद की हो सकती हैं। चित्राधार में कवि की ब्रजभाषा रचनाएं हैं, पहले 2-3 आख्यानक हैं, फिर स्फुट कविताएं जो 2 खंडों में विभक्त हैं। पहले खंड में पराग शीर्षक से कुछ नए विषयों पर लिखी कविताएं हैं, अंतिम खंड मकरंद बिंदु में कवित्व सवैये और पद हैं। यहाँ आकर लगेगा कि कहीं सूर की प्रतिध्वनि है तो कहीं रीतिकालीन कवियों की और कहीं प्रसाद से ठीक पहले के कवि भारतेंदु की। पराग खंड का अध्ययन आधुनिक भाषा और संवेदना के विकास को समझने के लिए असाधारण महत्व का है। इन कविताओं में जैसे 3 धाराएं एक दूसरे से मिल रही हैं, भाषा ब्रजभाषा है, वर्णन शैली द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक है, पर विषय शीर्षक नई भंगिमा लिए हुए है। शीर्षक है संध्या तारा, जिस वर्ण विषय पर आगे चलकर सभी छायावादी कवियों ने कविताएं लिखी हैं। विषाद प्रसाद, संध्या सुंदरी निराला, एक तारा सुमित्रा नंदन पंत, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन महादेवी, शैली सीधे वर्णन की है। संध्या के गगन महासुंदर वरन कोह झलकत तुम अमल रतन और परंपरित ब्रजभाषा का प्रयोग है। इस प्रकार प्रसाद की इन कविताओं में बड़ी अच्छी तरह देखा जा सकता है कि परंपरा के बीच में से नया प्रयोग कैसे उभरता है। छायावाद को आधुनिक कविता की वयस्कता पहले कहा है, यह वयस्कता कैसे आती है, इसका अत्यंत सटीक विकास क्रम प्रसाद के काव्य में दृष्टव्य है। वे बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं, पर उनका केंद्रीय व्यक्तित्व कवि का है। प्रसाद में ही पहली बार देखा जा सकता है कि लौकिक और अलौकिक प्रेम के बीच अंतर विलीन हो गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी नाटिका श्री चंद्रावली सीधे अपने आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। सख्य भाव की मुद्रा में वे कहते हैं, प्यारे लो तुम्हारी चंद्रावली तुम्हें समर्पित है, अंगीकार तो किया ही है, इस पुस्तक को भी उन्हीं की कहानी से अंगीकार करो। इसमें तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का नहीं जो संसार में प्रचलित, पृष्ठ संख्या 116 है। प्रसाद में आकर उस प्रेम और इस प्रेम का अंतर मिट जाता है। यह ठीक है कि आराध्य और प्रेमास्पद के बीच अद्वैत की यह अनुभूति प्रसाद के कुछ पहले रविंद्रनाथ ठाकुर में देखी जा सकती है। पर यह भी स्मरणीय है कि गीतांजलि और झरना के प्रकाशन में 6 वर्षों का ही अंतर है। झरना का समर्पण है, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, शुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जलबिंदु कहाँ निधिशीर, हमारा कहो न अब क्या रहा, तुम्हारा सब कब का हो रहा, तुम्हें अर्पण और वस्तु त्वदीय, छीन लो छीन ममत्व मदीय। यहाँ तुम्हें और तुम्हारा जितना परम तत्व का संबोधन है उतना ही प्रेमास्पद का। अब कविता में व्यक्त प्रेम उसके आलंबन की लौकिकता अलौकिकता पर निर्भर न होकर उसकी प्रेम भाव की उत्कटता पर निर्भर है। राधा कृष्ण को आश्रय आलंबन रूप में चित्रित करने वाली कविता इस दृष्टि से सस्ती वासनाओं को उभारने वाली और अश्लील हो सकती है, और सामान्य नायक नायिका को संबोधित रचना उत्कृष्ट कला प्रधान तथा आध्यात्मिक कोटि की हो सकती है। जैसा संकेत किया जा चुका है, आधुनिक काल में आकर ईश्वर और मनुष्य का एक रिश्ता एक नया मोड़ लेता है। मनुष्य अब संपूर्ण रचना के केंद्र में है, ईश्वर व्यक्तिगत आस्था का विषय है, काव्यगत चित्रण का नहीं। परम तत्व और प्रेमास्पद के बीच उभरते अद्वैत की अनुभूति द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक भाषा शैली में संभव नहीं थी। यहाँ फिर प्रसाद पहले कवि हैं जहाँ संश्लिष्ट भाषिक विधान में यह नए ढंग की अनुभूति रूपायित होती है। उनके काव्यात्मक विकास में अच्छी तरह देखा जा सकता है कि प्रथम प्रभात नामक कविता में यह भाषिक विकास पहली बार रचा गया है। यह संयोग से कुछ अधिक है कि यह कविता कवि के 2 संकलनों में संकलित है, पहले खड़ी बोली काव्य संकलन कानन कुसुम और पहले महत्वपूर्ण संकलन झरना में। इस विशिष्ट स्थिति में यह समझा जा सकता है कि कवि अपने इस कविता को अपने विकास क्रम में संधि स्थल पर मानता है। प्रथम प्रभात का पहला छंद इस प्रकार चलता है। मनोवृत्तियां खग कुल सी थी सो रही, अंतःकरण नवीन मनोहर नीड़ में, नील गगन था शांत हृदय था हो रहा, बाह्य आंतरिक प्रकृति सभी सोती रही। पूरी कविता 3 स्तरों पर एक साथ गतिशील होती है। एक स्तर पर प्रातःकालीन परिदृश्य का अंकन है, साथ ही साथ प्रथम प्रणय की अनुभूति चित्रित होती चलती है। इन 2 स्तरों के साथ साथ और जैसे उनकी टकराहट में साक्षात्कार का प्रथम अनुभव संजोया गया है। अर्थ के ये स्तर किसी श्लिष्ट प्रयोग से नहीं सधते, वरन उसी एक शब्द विधान के बीच से फूटते हैं और एक दूसरे के संस्पर्श में अधिक निखरते हैं। बाह्य और आंतरिक प्रकृति का हिंदी कविता में यह पहली बार आमना सामना है और छायावाद का प्रथम प्रभात। तब यह आकस्मिक नहीं कि बिंब प्रक्रिया की शुरुआत हिंदी कविता में इसी बिंदु से होती है। यहाँ से चलकर प्रसाद बराबर संश्लिष्ट तथा जटिल अनुभवों का चित्रण करते हैं। झरना की विषाद शीर्षक कविता इस नए विधान में पूरी तरह बनी हुई है। यहाँ संध्या और विषाद के अनुभव जैसे एक दूसरे में बट दिए गए हैं। अभी तक समीक्षा मात्र में अर्थ का पृष्ठ संख्या 117 द्वैत बना रहा है। मुख्यार्थ व्यंग्यार्थ प्रस्तुत अप्रस्तुत इमोशन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यहाँ छायावाद में पहली बार अर्थ के स्तर अलग अलग दिखने पर भी एक दूसरे में मिल गए हैं, संश्लिष्ट हैं। इन रचनाओं में से आधुनिक साहित्य चिंतन की नई अवधारणा विकसित होती है, अर्थ का अद्वैत, जहाँ अर्थ के अलग अलग स्तर एक दूसरे से टकरा कर एक बृहत्तर अर्थ की सृष्टि करते हैं और स्वयं विलीन हो जाते हैं। आंसू के सूक्ष्म प्रबंध और कामायनी के महत्वाकांक्षी विधान में मानव जीवन का समग्र संश्लिष्ट रूप चित्रित होता है, जिसे नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने ग्रंथ जयशंकर प्रसाद की भूमिका में कहा है, बड़े जीवन चक्रों को हाथ में लेना, पेचीदा भावधाराओं और सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उठी हुई जटिल समस्याओं का निरूपण करना, व्यक्ति देश और जाति के जीवन के बृहद छाया आलोकों को उद्घाटित कर सकना, सारांश यह कि जीवन के गहरे और बहुमुखी घात प्रतिघातों और विस्तृत जीवन दशाओं में पद पद पर आने वाले उद्वेलनों को चित्रित करना, उन्हें संभालना और अपनी कला में उन सबको सजीव करना। कामायनी में सुख दुख के द्वंद के ऊपर आनंद की जैसी भाव भूमि की खोज की गई है, उसी के समतुल्य आंसू में वेदना की स्थिति है। प्रसाद की जीवन दृष्टि किसी स्तर पर आनंद और वेदना को समान कोटि की अनुभूति मानती है। मुक्ति बोध ने सच्चित आनंद की टक्कर में प्रयोग दिया सच्चित वेदना। प्रसाद अपने ढंग से आनंद और वेदना दोनों को एक साथ साधते हैं। आंसू सामान्यतः मुक्तकों का संकलन माना जाता है और अपने पहले संस्करण में शायद कवि द्वारा इसी रूप में परिकल्पित था, पर 8 वर्ष बाद प्रकाशित दूसरे संस्करण में कवि ने इसके विधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और अब अपने वर्तमान रूप में वह एक प्रबंध गीति जैसा है। संध्या के परिदृश्य पर वह खुलता है, फिर रात आती है और धीरे धीरे अधिकाधिक सघन तथा एकांत होती जाती है। इसी के समानांतर कवि की वेदना यात्रा है। अंतिम अंश में प्रातः काल का संकेत देकर रचना का समापन होता है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात हिमकंता आंसू इस विश्व सदन में। प्राकृतिक दृश्यावली के इस क्रम में एक सूक्ष्म कथा बुनी हुई है। यहाँ कवि वियोग के वर्णन से आरंभ करता है, जहाँ स्मृतियों की एक बस्ती इसी हृदय में बस गई है। फिर अतीत के संयोग सुख और प्रेमास्पद के रूप सौंदर्य का चित्रण है। संयोग क्षणिक है और शीघ्र ही विरह का लंबा दौर शुरू होता है, किंतु कवि का संयोग और विरह दोनों व्यक्तिक नहीं, समूची प्रकृति उसमें भागीदार है। आंसू के अंतिम खंड में विरह का यह सार्वभौम रूप अंकित हुआ है, जहां पीड़ा और कष्ट के विविध दृश्यों का चित्रण करने के अनंतर कवि संकेत देता है कि समूची सृष्टि की पीड़ा स्वयं उसने झेली है और हर पीड़ा में उसकी अपनी व्यथा छिपी है। सूखी सरिता की शैया, वसुधा की करुण कहानी, कूलों में लीन न देखी क्या तुमने मेरी रानी। विधान की यह जटिलता और संश्लिष्टता उच्च जीवन स्तर और काव्य स्तर की द्योतक है। प्रकृति भी ऊंचे स्तर पर ऐसा कुछ नहीं बनाती जिसका एक ही और सीधा उपयोग हो। यह पृष्ठ संख्या 118। विडंबना और विरोधाभास है कि शरीर के जो अंग अपशेष निकास के माध्यम है वे ही प्रजनन के निमित्त बनते हैं। नारी के उरोध जैसे उसके प्रेमी प्रति के लिए प्रिय है, वैसे ही पुत्र के लिए भी। भाषा प्रयोग से यह भंगिमा स्पष्ट होगी कि वे उरोज हैं या स्तन। सृष्टि और मानव जीवन की इस जटिलता तथा संश्लिष्टता का उत्कृष्टतम रूप आधुनिक विज्ञान और कला में दृष्टव्य है। कामायनी का रचाव जैसा जटिल है, विधान वैसा ही व्यापक तथा महत्वाकांक्षी। इसमें एक और मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है और साथ ही साथ आदिम मनुष्य का उत्तरोत्तर जटिल और संगठित होता रूप है। संस्कृति के विकास में कवि दिखाता है कि कैसे मनुष्य मृगया युग और कृषि युग को पार करता हुआ वर्तमान यांत्रिकी युग में आन पहुंचा है और इस यांत्रिकी युग के क्या खतरे हैं तथा उनका अतिक्रमण कैसे संभव है। इसी तरह मनुष्य का अंतःकरण आदिम प्रभुत्व और आधिपत्य की भावना से भरा हुआ कैसे ईर्ष्याग्रस्त होता है और फिर कैसे मनु का अहम भाव श्रद्धा के साहचर्य में प्रेम की महिमा धीमे धीमे सीखता है। प्रसाद ने बड़ी निष्ठा के साथ प्रदर्शित किया है कि मानवीय संस्कृति देव संस्कृति की तुलना में किसी तरह हीन नहीं है, वरन वह देव संस्कृति जो भौतिकवादी है, सुख केवल सुख की संस्कृति है, उससे आगे का विकसित और सूक्ष्म रूप है। इस माने में कवि ने मध्यकालीन हीन भावना से ग्रस्त देवता प्रधान समाज को नए और आधुनिक मानवीय आत्मविश्वास से संपन्न किया है। रचना की यह विराट दृष्टि संसार के प्रख्यात महाकाव्यों में कहीं नहीं मिलेगी। अद्वैतवाद का चरम रूप आत्माद्वैत है। एक मन के दो हिस्से हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा। एक मन से व्यक्ति आराधक होता है, दूसरे से आराध्य। इन दोनों की फिर एकात्मता चरम अद्वैत की अनुभूति है, जिसे प्रसाद कमायनी में अंकित करते हैं। और यह विराट दृष्टि वैसी ही विराट परिकल्पना में से उपजती है। कामायनी में प्रसाद का चित्रण है कि मानवीय सृष्टि अपने जन्म के पूर्व ही काम के शाप से ग्रस्त हो जाती है। कथानक का यह अंश ईसाई धर्म गाथा से मिलता जुलता है, जहां ईडन के बगीचे से मनुष्य के पतन और ईश्वर के शाप का वर्णन किया गया है। पर भारतीय अभिप्राय के अनुसार शाप दिया गया है तो उससे उबरने का उपाय भी वहां बताया गया है। कामायनी में काम का मुख्य शाप है कि मनुष्य अब देवताओं की तरह अजर अमर नहीं रहेगा, मरणशील हो जाएगा। मनु अपने संकल्प से इस शाप को मनुष्यता के लिए वरदान में बदल लेते हैं। यह मरणशीलता मनुष्य की सृष्टि को देव सृष्टि की तुलना में अधिक सूक्ष्म और सृजनात्मक बनाती है। यहाँ शाप का अभिप्राय अपने स्थिर रूप में यदि ईसाई धर्म गाथा के निकट है तो गतिशीलता में भारतीय प्रणाली का अनुसरण करता है। प्रसाद का पक्ष है कि देव सृष्टि जहाँ भोग विलास और महज भौतिक सुख साधनों में डूबी हुई थी, वहाँ मनुष्य की सृष्टि कुछ नए मान मूल्यों का आविष्कार करती है, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रेम करने की क्षमता। मृत्यु पर विजय पाने के लिए मनुष्य प्रेम की क्षमता विकसित करता है और उसी से जुड़ी सृजनात्मक शक्ति। मानवीय सृष्टि के वैशिष्ट्य का यह रूप मुख्यतः काम और लज्जा और अंततः ईड़ा सर्ग में चित्रित होता है। देव सृष्टि में जो काम था वह मानवीय सृष्टि में अनंग होकर सूक्ष्म प्रेम में परिणत हो जाता है और इसी के समानांतर देवों की तृष्णा को तृप्ति दिखाने वाली रति मानवीय सृष्टि में लज्जा बन जाती है। नए संदर्भ में वह अपनी भूमिका स्पष्ट करती है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। पृष्ठ संख्या 119। काम और रति के क्रमशः प्रेम तथा लज्जा भाव में रूपांतरण के माध्यम से मानवीय सृष्टि की व्याख्या प्रसाद की अपनी मौलिक परिकल्पना है और भारतीय तत्व दृष्टि में एक नया आयाम जोड़ती है। वैसे ही जैसे श्रद्धा की मान्यता, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, निष्काम कर्म की स्वीकृत धारणा में भोग के तत्व को कर्म से जोड़कर एक नई और आधुनिक दृष्टि का उद्घोष करती है। ईड़ा सर्ग में देव सृष्टि का मानवीय सृष्टि को सत्ता हस्तांतरण पूरा हो जाता है। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राचीन नभ में, देखे नर अपना राजकाज। मनुष्य इसी सर्ग में दिए गए अपने मरणशीलता के शाप को अंगीकार करता है और जैसा संकेत किया गया अपनी नव विकसित प्रेम भावना और सृजनात्मक क्षमता के सहारे उसे अतिक्रमित करना चाहता है। सृजनात्मकता के स्थूल स्तर पर मनुष्य मृत्यु के बाद जैसे अपनी संतान में जीवित बना रहता है, वैसे ही सूक्ष्म स्तर पर अपनी कला रचना में अपने विकास क्रम में मनुष्य की संस्कृति आज जहाँ पहुंची है, वहाँ प्रसाद के अनुसार उसकी समस्याएं हैं अति भौतिकता, अति बौद्धिकता और अति यांत्रिकता। ईड़ा के साथ मिलकर मनु ने विज्ञान सहज साधन उपाय स्वीकार करते हुए सारस्वत प्रदेश की जो उद्योग प्रधान सभ्यता बनाई है, वहाँ का जीवन क्रम इन्हें जन्म देता है। इन समस्याओं से उत्पन्न संघर्ष को समित करने के लिए कवि ने समरसता की भावभूमि संकेतित की है। भारतीय और पाश्चात्य विचारधाराओं की टकराहट और उनके सामंजस्य की प्रणाली प्रसाद ने रचना के कई क्षेत्रों में अपनाई है, जो एक प्रकार से 19वीं शती के पुनर्जागरण की एक मुख्य आधार भूमि कही जा सकती है। पूर्व और पश्चिम का ऐसा ही द्वंद्वात्मक संबंध कवि ने अपने दर्शन में विकसित किया है। विकास के लिए द्वंद्व की अनिवार्यता, यही दुख सुख विकास का सत्य उन्होंने पश्चिम से ली है, पर इस द्वंद्व को समरस करने की भावना, नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान पूर्व से। द्वंद्व और समरसता के माध्यम से कवि आनंद की भावभूमि तक पहुंचना चाहता है, जो भारतीय परंपरा में वैदिक और शैव दोनों धाराओं के अंतर्गत जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। मनु नए युग के चिंतानंद है, चिंता से आनंद तक की यात्रा करते हुए और यूं दोनों भावभूमियों को एक साथ जोड़ते हुए कामायनी का समापन होता है। समरस थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस्ती, आनंद अखंड घना था। अपने कृतित्व में प्रसाद यूं जितने पुनर्जागरण चेतना से प्रेरित हुए हैं, उतना ही उन्होंने उसे समृद्ध किया है। छायावाद के उदय के साथ रीति काल की भूमिका क्या रही है, यह अध्ययन अपने में बड़ा रोचक और रचनात्मक क्रम विकास को समझने में अत्यंत सहायक है। यह ठीक है कि आधुनिक काल के आरंभिक विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके सहयोगी लेखकों ने रीतिकालीन प्रवृत्तियों का जमकर विरोध किया। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रीतिवाद विरोधी अभियान के अंतर्गत इस स्थिति का अच्छा विश्लेषण किया है। अपने काव्य संकलन पल्लव की भूमिका में पृष्ठ संख्या 120 छायावाद का बचाव करते हुए सुमित्रा नंदन पंत ने भी रीतिकालीन कवियों पर तीखे व्यंग किए हैं, पर आगे छायावादी कवियों ने अपने ढंग से रीतिकालीन प्रवृत्तियों को मान्यता भी दी। वैसे ही जैसे पितामह की प्रवृत्तियां कई बार पुत्र में नहीं पौत्र में झलक मारती हैं, निराला की ऐतिहासिक महत्व की कविता जूही की कली न केवल अपने विधान में कविता छंद पर आधारित है, वरन नायिका नायक प्रणय प्रसंग की दृष्टि से अपनी संवेदना में रीति काल से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। गीतिका में एक श्रृंगार गीत है, प्रिय यामिनी जागी, इसका अंतिम बंद है, फेर उर पट फेर मुख के बाल, लख चतुर्दिक चली मंद मराल, गेह में प्रिय स्नेह की जयमाल, वासना की मुक्ति मुक्ता त्याग में तागी। इस चित्रण की तुलना बिहारी की इस नायिका से करें, राती रमी रति देती करी औरे प्रभा प्रभात। निराला का एक और श्रृंगार गीत प्रस्तुत है, बीती रात सुखद बातों में प्रात, पवन प्रिय डोली, उठी संभाल बाल मुख लट पट दीप, बुझा हंस बोली, रही यह एक ठिठोली। इसकी पद्माकर से तुलना की जा सकती है, आरस सो आरत संभारत न शीस पट, गजब कुजारत गरीबन की धार पर, कहे पद्माकर सुगंध सरसावे सूची, बिथुरी बिराजे बार हिरन के हार पर। संयोग श्रृंगार के चित्रण में निराला रीतिकाल से प्रेरित हो तो यह स्वाभाविक है, प्रसाद में भी कुछ ऐसे प्रेरणा स्रोत देखे जा सकते हैं। आंसू में एक मार्मिक और सुकुमार रूप चित्रण है, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। सूक्ष्म और संश्लिष्ट शोभा चित्रण की दृष्टि से यह छंद वैसा ही प्रभावपूर्ण है जैसे सौंदर्य के प्रभाव को वह चित्रित करना चाहता है। इस चित्र को बिहारी ने पूरी तरह पूर्वाशित किया है। जरी कोर गौरे बदन बड़ी खरी छवि देखु लसती मनो बिजूरी किए शारद शशि परिभेशु। दोनों के विधान में मुख्य अंतर यह है कि बिहारी की परिकल्पना उत्प्रेक्षा के सहारे विकसित हुई है जबकि प्रसाद का अंकन बिंब में है, अर्थात रीतिकालीन कवि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के ब्यौरे देता है जबकि छायावादी प्रस्तुत का हल्का उल्लेख करके अधिक रुचि से अप्रस्तुत को संवारता है और यह पाठक की कल्पना को सक्रिय होने के लिए अधिक अवसर देता है। एक अंतिम उल्लेख आंसू से और करके इस प्रसंग को पूरा किया जा सकता है। संयोग श्रृंगार के प्राकृतिक परिवेश का चित्रण प्रसाद ने बड़े सूक्ष्म और संश्लिष्ट बिंब में किया है। मुरली मुखरित होती थी मुकुलों के अधर बिहसते मकरंद भार से दबकर श्रवणों में स्वर जा बसते। ध्वनि गंध और स्पर्श के अनुभवों का एक विलक्षण संप्रयुक्त रूप इस छंद में कवि ने संजोया है जो जितना सूक्ष्म है उतना ही जटिल और वैसा ही संश्लिष्ट। इस अनुगूंज की गूंज रीति काल के अंतिम महत्वपूर्ण कवि द्विजदेव की इन पंक्तियों में सुनी जा सकती है। चांदनी के भारण लगत उनयो सो चंद गंध ही के भारण बहत मंद मंद पौन। यहाँ परंपरित ढंग के अप्रस्तुत विधान का सहारा न लेकर कवि ने वर्णन को बिंबात्मक बनाया है। ऐसे प्रसंगों की तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि श्रृंगार वर्णन में ही नहीं सूक्ष्म परिकल्पना प्रधान चित्रों में भी छायावादी कवि किसी स्तर पर रीतिकालीन कवियों का रीढ़ी है। यह परंपरा और प्रयोग का स्वस्थ रिश्ता है।